डाइनिंग हॉल की बड़ी सी टेबल पर आज पूरा परिवार एक साथ बैठा था। चांदी के बर्तनों की हल्की खनक, सर्विंग डिश से उठती खुशबू, सब कुछ बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन इस टेबल पर बैठा हर इंसान अपने अपने अंदर एक तूफान छुपाए था। अक्षरा कुर्सी पर थोड़ी सी झुकी बैठी थी, उसके सिर पर हल्की पट्टी अब भी बंधी थी। वो कभी प्लेट में देखती, कभी सामने बैठे लोगों के चेहरे, जैसे सबको पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसने सिर उठाया और सीधा रत्ना देवी की तरफ देखा। माँ, एक बात पूछूं? रत्ना देवी ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, पूछो। अक्षरा की आवाज मासूम थी, लेकिन सवाल ने सबको अंदर तक हिला दिया। विशु कहाँ है? वो डिनर पर क्यों नहीं आया? बस एक पल में पूरा माहौल जम गया। अदिति का हाथ जो चम्मच पकड़ रहा था वहीं रुक गया। उसकी नज़र धीरे धीरे उठी और अक्षरा पर टिक गई। रत्ना देवी ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रही हों। फिर उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, वो बेटा ऑफिस के काम से मुंबई गए हैं। अक्षरा ने हल्का सा सिर हिलाया। ओह अच्छा, इसलिए नहीं आए। उसकी आवाज़ में कोई शक नहीं था, बस एक सीधी सी स्वीकार्यता। तभी उसके पास बैठी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा ज़्यादा मत सोचो, डॉक्टर ने मना किया है, सिर में दर्द पड़ जाएगा। अक्षरा ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है माँ, मैं नहीं सोचूंगी। लेकिन उसी पल उसकी नज़र अचानक अदिति पर गई। वो कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे पहली बार देख रही हो। ये कौन है? अक्षरा ने सीधा सवाल कर दिया। चम्मच की आवाज़ टेबल पर गिरते ही हल्की खनक हुई। अदिति का दिल एकदम से जोर से धड़का। सुषमा देवी ने तुरंत कहा, अरे बेटा अदिति को भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, ये आर्यन की पत्नी है। अक्षरा ने भौहें सिकोड़ ली, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो। आर्यन की पत्नी? फिर उसने अदिति को थोड़ा ध्यान से देखा। सॉरी, मुझे याद नहीं। अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। कोई बात नहीं, अभी अभी तो डॉक्टर ने कहा है, टाइम लगेगा। उसने धीरे से बात आगे बढ़ाई। कैसा लग रहा है अब? अक्षरा ने कंधे उचकाए। अजीब, सब कुछ जाना पहचाना भी लगता है और अनजान भी। अदिति ने थोड़ा आगे झुककर पूछा, तुम्हें पिछले कुछ दिन याद है? मतलब एक्सीडेंट से पहले क्या हुआ था? रत्ना देवी की नज़र तुरंत अदिति पर गई। अदिति का सवाल सामान्य था, लेकिन उसके पीछे की मंशा सिर्फ वही जानती थी। अक्षरा ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे दिमाग पर जोर डाल रही हो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखता, बस सब धुंधला धुंधला। अदिति की नज़रें उसकी आंखों में गहराई तक उतर रही थीं, जैसे वो झूठ की कोई झलक ढूंढ रही हूँ। तुम्हें सीढ़ियाँ याद है? अदिति ने धीरे से पूछा। ये सवाल सुनते ही रत्ना देवी का दिल एक पल के लिए रुक गया। अक्षरा ने आंखें खोली, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। सीढ़ियाँ? उसने दोहराया। कुछ सेकंड खामोशी, फिर उसने सिर पकड़ लिया। आह, उसकी सांसें तेज हो गईं। सिर दर्द हो रहा है। सुषमा देवी तुरंत घबरा गईं। देखा, कहा था ना, ज़्यादा मत सोचो। रत्ना देवी ने तुरंत अदिति की तरफ देखा। उनकी आवाज़ इस बार सख्त थी। अदिति, बस करो, पुरानी बातें मत छेड़ो। अदिति थोड़ा पीछे हट गई। मैं तो बस कुछ नहीं, रत्ना देवी ने बात काट दी। अभी सबसे ज़रूरी ये है कि अक्षरा ठीक हो जाए। उन्होंने अक्षरा का सिर सहलाते हुए कहा, बाकी सब बाद में। अक्षरा अब भी सिर पकड़े बैठी थी, उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मुझे बस इतना याद है कि कुछ बहुत ज़रूरी होने वाला था। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं, जैसे कोई बड़ा फैसला या। वो रुक गई। रत्ना देवी ने तुरंत बात संभाली। हाँ बेटा, था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम्हारी और विश्वनाथ की शादी होने वाली है। एकदम सन्नाटा। अदिति का दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया। अक्षरा ने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी और विशु की? उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन कोई विरोध नहीं। हाँ बेटा, रत्ना देवी ने नरमी से कहा, सब तय हो चुका है, बस तुम्हारी तबीयत ठीक होते ही। अक्षरा चुप हो गई। उसने टेबल पर रखे पानी के ग्लास को देखा, फिर धीरे से उसे उठाया, एक घूंट लिया, जैसे इस खबर को अंदर उतार रही हो। अदिति की नज़रें उस पर जमी थीं, हर एक्सप्रेशन, हर सांस, हर पल। क्या सच में इसे कुछ याद नहीं? उसके मन में सवाल गूंज रहा था। लेकिन फिर अक्षरा ने अचानक सिर उठाया और इस बार उसकी नज़र सीधे अदिति से टकराई। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और उस एक पल में अदिति को ऐसा लगा जैसे अक्षरा की आंखों में कुछ चमका हो, कुछ जो मासूम नहीं था, जैसे उसे सब पता हो। लेकिन अगले ही सेकंड अक्षरा ने नज़रें झुका ली। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अगर सबने तय किया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसकी आवाज फिर से वही सीधी सादी हो गई थी। रत्ना देवी ने राहत की सांस ली, बस यही समझदारी चाहिए थी। लेकिन अतिथि का दिल अब और ज्यादा बेचैन हो चुका था। ये सच में भूल गई है या ये खेल रही है? उसने प्लेट में रखे खाने को देखा, लेकिन अब उसे भूख नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर सब फिर से सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे। बातें शुरू हो गईं, हल्की हंसी भी। लेकिन उस टेबल पर बैठी दो औरतें, अदिति और अक्षरा, दोनों के बीच अब एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। एक सच छुपा रही थी और दूसरी शायद सब जानते हुए भी चुप थी। अदिति चुपचाप अपनी प्लेट में रखे खाने को देख रही थी। चम्मच हाथ में था, लेकिन वो बस यूं ही उसे इधर उधर घुमा रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी, अगर सच में इसकी याददाश्त चली गई है। उसने हल्के से नजर उठाकर अक्षरा को देखा। वो बिल्कुल सामान्य बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसके अंदर कोई तूफान ही ना हो। अदिति के होठों पर एक बहुत हल्की, लगभग छुपी हुई मुस्कान आई। तो ये मेरे लिए ही अच्छा है, उसने मन ही मन सोचा। अब ये कभी भी पापा को सच नहीं बता पाएगी, कभी नहीं। उसका दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। जो डर अभी तक उसे अंदर से खाया जा रहा था, वो जैसे थोड़ा कम हो गया। सब कुछ यहीं खत्म हो सकता है, वो हादसा, वो धक्का, सब। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को समझा रही हो कि अब सब कंट्रोल में है। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में वो पल कौन था, सीढ़ियों से गिरती हुई अक्षरा, उसकी आंखें, वो चीख। अदिति का हाथ हल्का सा कांप गया। नहीं, मुझे ये सब भूलना होगा, उसने खुद को चटका दिया। फिर उसने एक बार फिर अक्षरा की तरफ देखा। तुम भूल चुकी हो और यही सही है। उसकी आंखों में अब डर कम और एक अजीब सा सुकून ज्यादा था। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे एक दूसरा मौका दे दिया हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने बैठी अक्षरा कभी कभी चुपचाप उसकी तरफ देख लेती थी और उसकी नजरों में कहीं न कहीं एक अनकहा राज अब भी जिंदा था।